नमस्कार, ब्रह्म कुमारी इसके फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह हमारी विशेष लाइव प्रस्तुति है। नाम है इसका बी द चेन सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और पिछले 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त से दोस्तों हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इस चैलेंजिंग टाइम में, जो मुश्किल की घड़ियां हैं, एक ऐसा दौर हमारे हाथ में है जहां पर बहुत सारी चीजें नई हो रही हैं। अब इन नई चीजों को डील करने के लिए नए तरीके चाहिए, नए हथियार चाहिए और नए टूल्स चाहिए जिसके साथ हम इन नए चेंजेस को डील कर सकें। और इसी दौर में इन चीजों से इक्विप करने के लिए, कुछ न कुछ मदद करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ये विशेष कार्यक्रम लाए हैं, जहां पर ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों से इन चैलेंजिंग टाइम्स में आप अपने मन के प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस या इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है तो उनमें से कुछ ऑफर करने की हमारी छोटी सी कोशिश रही है। ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने हर दिन हमारे साथ मास्टर ऑफ मेडिटेशन बनकर जुड़ते हैं और मेडिटेशन और स्पिरिचुअल टूल्स और लाइफ के मैनेजमेंट के कुछ ऐसे गुर हमें सिखाते हैं। आइए आज की इस बातचीत को शुरू करते हैं। अगर आपके पास प्रश्न है तो आप हमारे साथ प्रश्न पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप जहां पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वहां पर कमेंट्स में आप अपने प्रश्न डालिए और उन प्रश्नों को हम आज के हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे। अगर आपको लगता है आपके मन में कोई प्रश्न नहीं है, आप बस हमारे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप हमें एक शाउट आउट दे सकते हैं, वो सब कुछ स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे ही वरिष्ठ राजयोगिनी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारी कविता दीदी जी, जो निदेशिका हैं ब्रह्मा कुमारी इसकी त्रिपुरा और बांग्लादेश से जुड़े हुए सेवा केंद्रों के। पिछले कुछ दशकों में दीदी जी के मार्गदर्शन में हजारों लोगों ने अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया है और आध्यात्म के पथ पर अग्रसर हुए जा रहे हैं। आइए दीदी जी से करते हैं बातचीत। कविता दीदी जी, स्वागत है आपका। दीदी, हर दिन हमारे दोस्त सवाल पूछते हैं, उन सवालों में से कुछ सवाल हम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं क्योंकि एक ही घंटे का समय होता है। तो कल के कुछ सवालों से मैं एक प्रश्न लेना चाहता हूं। हमारे एक दोस्त ने कल प्रश्न पूछा था व्यसनों के बारे में। बहुत बार हम किसी एडिक्शन से जुड़े हुए होते हैं, कोई एडिक्शन हमारे से लग गई होती है, कोई लत होती है। प्रहलाद जी नाम है इनका, और उन्होंने प्रश्न पूछा था कि अगर एक व्यसनी व्यक्ति है तो वो अपने मन बुद्धि और संस्कार को, अपने हैबिट्स को, अपने बुद्धि और मन को कैसे बदले। ऐसे प्रहलाद जी ने प्रश्न पूछा था।
अच्छा अच्छा बहुत अच्छा प्रहलाद जी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है क्योंकि ऐसी समस्या लेकर, ऐसे प्रश्न लेकर हमारे पास बहुत सारे भाई बहने आते हैं और यहाँ आकर के सही मार्गदर्शन उनको मिलता है और ये जो आदत है, एडिक्शन है, उनकी छूट भी जाती है। वास्तव में एडिक्शन जो चीज होती है ना, वो धीरे धीरे आदत से बनती है। आदत, हैबिट, एक दिन दो दिन से आदत बन जाती है, आदत से धीरे धीरे वो चीज फिर ऐसा हो जाता है कि हम उसके दास बन जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। केवल व्यसन ही नहीं, कोई भी चीज के जब हम दास बन जाते हैं, उसके बिगर जी नहीं सकते हैं, उसको एडिक्शन कहा जाता है। परंतु इसमें नशीले पदार्थ जो है वो, उसके हम दास बनते हैं तो वो हमारा सर्वनाश कर देते हैं, सत्यानाश कर देते हैं। तो मैंने तो देखा कि आपने ये बात रियलाइज किया है कि ये चीज अच्छा नहीं है, इससे हमें छूटना है। इतना जो रियलाइज किया ना, बस बस आपने एक कदम उठा लिया है। अब रही बस अपने विल पावर को स्ट्रांग करने की बात। जब आपने समझ ही लिया कि ये गलत है, ये मुझे गलत तरफ ले जा रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, मेरा सत्यानाश कर रहा है, बस क्या चाहिए, एक संकल्प ही चाहिए मनुष्य को बदलने के लिए। कहते हैं एक सेकंड का संकल्प, एक सेकंड की घड़ी ही जीवन में बहुत बड़ी होती है जो मनुष्य को बदल सकती है। जब हमने रियलाइज कर लिया ये गलत है, उसके प्रति नफरत लाना बहुत जरूरी। जब तक हम उसके प्रति प्यार रखते रहेंगे और अंदर से सोचते भी रहेंगे कि इसको कैसे छोड़ूं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके प्रति थोड़ी हमारे अंदर वीकनेस है, प्यार है, वीकनेस है, तो हम छोड़ने चाहिए। इसलिए नफरत, गलत चीज के प्रति नफरत, इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, बस नफरत की भावना लाइए कि ये मेरा दुश्मन है, इसी दुश्मन ने मेरा इतना नुकसान किया है, आगे भी इसने बहुत सारा नुकसान करने का ठान रखा है, ये मेरा दुश्मन है, मैं इसका छाया भी नहीं देता। जैसे देखिए दुनिया में कोई मनुष्य किसी का दुश्मन ही करता है, जब आपको पता चल जाता है कि ये मेरा दुश्मन है, तो क्या उसको आप अपने कंपाउंड के अंदर प्रवेश करना देंगे? नहीं देंगे ना। प्रवेश करते हुए अगर आप देखेंगे तो तुरंत गेट बंद करेंगे और कहेंगे खबरदार यहाँ तुम आ नहीं सकते हो, गेट खुला नहीं रखेंगे। गेट खुला भी रखें और कहें कि नहीं ये निकल जाए, तो गेट खोला तो आपने ही ना। इसी प्रकार हम अपने मन के अंदर गेट खुला रखेंगे, उसके प्रति थोड़ी वीकनेस रखेंगे तो वो छूट नहीं सके। इसलिए जब खराब चीज है तो बस उसको खराब समझ के उसके प्रति नफरत की भावना रखना, दुश्मन सोचना है। और वास्तव में दुनिया में कोई मनुष्य मनुष्य का दुश्मन नहीं होता, ये नशा ही, ये गलत आदत ही हमारे दुश्मन होते हैं। तो उसके प्रति सबसे बड़ी बात तो एक क्या चाहिए, नफरत चाहिए, अंदर से नफरत चाहिए। और दूसरी बात ये चाहिए कि दृढ़ता चाहिए कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं इंसान हूं ना, मैं इंसान हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा परम शक्ति की संतान हूं, परमात्मा परम शक्ति है तो मैं उसके संतान, मैं कमजोर नहीं, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर दृढ़ता है। आप सोचते होंगे दृढ़ता नहीं, क्या करूं, चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ, ऐसा सोचते होंगे। लेकिन सोचना है कि मैं दृढ़ता मेरे अंदर है, मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने इतनी शक्ति दे रखी है, वो जो चाहे वो कर सकता है। कहते हैं संकल्प से सृष्टि, संकल्प कर लिया मुझे छोड़ना है, इसको छूना भी नहीं, इसकी तरफ देखना भी नहीं है, तो बस दृढ़ता के आधार से उसको छोड़ सकेंगे। तीसरी बात है वो उसके बदले में कोई एक अच्छी आदत को डेवलप करना, इंस्टीड। व्यक्ति को क्या चाहिए, इंस्टीड। इंस्टीड जैसे छोटा बच्चा चाकू लेके खेलना चाहता है, पसंद कर रहा है, खेल रहा है, हमको पता है कि ये हाथ काट लेगा उसका, तो हम क्या करते हैं उसको खिलौना दिखाते हैं। और जब खिलौना की तरफ अट्रैक्टेड होगा, खिलौना पकड़ने जाएगा, चाकू हाथ से छूट जाएगा। तो नशा जो है वो ऐसे ही चीज है, उसको छोड़ने के लिए कोई एक अच्छी आदत को डालना है, कोई ना कोई एक अच्छा आदत शुरू कर दीजिए जो जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है। जैसे हमारा कोई हॉबी है, कोई हॉबी है, कोई बात में हमें इंटरेस्ट है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, किसी को कोई कुत्ता पालने में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ लिखने में इंटरेस्ट है, किसी को कुछ न्यू क्रिएट करने में इंटरेस्ट है, कोई भी एक गुड हैबिट को आप अपना सहारा लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए या कुछ ना कुछ डेली हैबिट। और जिस टाइम पर ये नशा, उस टाइम को भी देखना है किस टाइम पर मुझे ये नशा मजबूर करता है। किसी को शाम होते ही नशा याद आता है, तो वो शाम का समय आप खाली नहीं रहना। किसी को रात होते ही नशा याद आता है, वो टाइम खाली नहीं रहना, उस टाइम को अदरवाइज बिजी कर देना, तो वो नशा याद भी नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरा इंटरेस्टेड कोई काम में बिजी है। और सबसे बड़ी बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि परमात्मा परम शक्ति का मदद लेना है, इसलिए मेडिटेशन का अभ्यास रोज करेंगे तो अपने अंदर विल पावर बढ़ेगी। राजयोग मेडिटेशन ऐसा चीज है, इसके कुछ दिन तक अभ्यास करेंगे ना, बस आपका विल पावर बढ़ेगा, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन आ जाएगा, फिर आपका कब छूट जाएगा नशा पता नहीं चलेगा। नशा को छोड़ना नहीं पड़ता, हमारे यहाँ आने वाले भाई बहनों का सबका ये अनुभव है, लाइफ एक्सपीरियंस है कि हमारा नशा कैसे छूट गया हमको पता नहीं चला, हमने नशे को नहीं छोड़ा, नशे ने हमको छोड़ा, नशा हमें छोड़कर चला गया, कब छूट गया हमको पता ही नहीं चला, बाद में हमने देखा वाह कमाल, मेडिटेशन करने पर नशा हमें छोड़कर चला। तो ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, और आज सारी दुनिया इससे पीड़ित है, चाहे तो मनुष्य छोड़
जी
सकता।
मैं समझता हूँ दीदी, प्रहलाद जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिला है। और जो आपने चार चीजें बताई, चारों ही चीजें कितनी सिंपल हैं। अगर अंदर से वो छोड़ने की भावना आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, तो ये छोटी छोटी
जी
चीजें, अपने आप को बिजी रखना, कुछ पॉजिटिव चीज करना, मेडिटेशन करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो
और
खुद कुछ
सेल्फ
ये कर
टॉक,
पाएंगे। जी, खुद
प्रहलाद भाई
से
आप
बात
अपने आप
करना।
से बात करना, अपने आप को बोलना, प्रहलाद तू तो भगवान का बच्चा है, प्रहलाद तू तो इस जीवन रूपी युद्ध में विजयी बनने वाला है, हारने वाला नहीं है, तो तू तो इंसान है, भगवान का संतान है, इस जीवन रूपी युद्ध में पीछे मुड़ने वाला नहीं है, तुम तो विजयी योद्धा है, तुमको विजयी बनना है, मैं विजयी बनने वाला हूँ, प्रहलाद मैं भगवान का बेटा हूँ, ऐसे अपने आप से बात कर।
बहुत ही अच्छी बात
ठीक
आपने
है,
कही दीदी जी, बहुत ही सुंदर चीज। अगला एक प्रश्न हमारे साथ आया है। मिनी जी हमारे साथ YouTube पे जुड़े हैं लाइव, और वो प्रश्न पूछते हैं, मुझे टॉप करने की बहुत इच्छा है बट ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा मिनी कहती हैं। मैं समझता हूँ मिनी जी एक स्टूडेंट होगी और एग्जाम टॉप करने की बहुत इच्छा है बट ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा वो कहती हैं। उनको गाइड करें प्लीज।
मिमी, उनका नाम मिमी है ना? अच्छा
मिनी
बहुत
मिनी
अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा। तो ऐसा है बहन मिमी, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, टॉप करना चाहते हो, ये तो बहुत अच्छा है, आपने संकल्प बहुत अच्छा रखा है। जब हम संकल्प रखते हैं ना तो एक कदम उठा लेते हैं, लेकिन संकल्प करना ही काफी नहीं है, वैसा ही हमें मेहनत भी करना होगा, क्योंकि लोग तो हमें हमारे कर्मों से जानेंगे ना। आपने संकल्प तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उस टॉप को टॉपर बनने के लिए मेहनत तो करना होगा, और मेहनत के साथ साथ अपने आप को ये संकल्प भी देना पड़ेगा कि मुझे टॉपर बनना है। बनना है मात्र नहीं, कि आप सोच लो कि मैं टॉपर बन ही गई, बन ही जाऊंगी, मैं बनी थी फिर बनू। आप अपने विजन को एक सुंदर विजन बना लो। देखो जब कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनने के पहले ही, फाउंडेशन डालने के पहले ही पूरा बिल्डिंग का नक्शा बना लेते हैं, पूरा ब्लू प्रिंट बना लेते हैं, जबकि बिल्डिंग का फाउंडेशन ही पड़ा नहीं, लेकिन बिल्डिंग कैसा बनने वाला है, पूरा सारे मंजिल कैसे बनेंगे, सामने में कैसा बालकनी होगा, क्या गार्डन होगा, कैसा होगा, वो सारा एक नक्शा बना लेते हैं ना। और जब नक्शा बन जाता है तो नक्शा को सामने रखते हुए काम आगे बढ़ते हैं। तो जीवन का भी हमें क्या करना होता है, कैरियर बनाने के लिए पहले नक्शा बना लेना पड़ता है, वो नक्शा है विजन, और वो विजन अपने मन में हमें बना के तैयार करना। आप टॉपर बनना चाहते हो तो टॉपर बन गए हो, ऐसा सोच करके एक सुंदर विजन बना लो कि मैं टॉपर बन गई हूँ, बनने पर मेरा चेहरा ऐसा होगा, मेरा स्माइल ऐसा होगा, मेरी कॉन्फिडेंस ऐसी होगी, और मेरे हाथ में वो सर्टिफिकेट आएगी, मेरा वो कन्वोकेशन होगा, सभी मुझे बधाई कहेंगे, वो सारा जो है ना वो पिक्चर अपना विजन पहले से मन में क्लियर रखो, और उसी विजन को जैसे वॉल में टंगा हुआ पिक्चर को रोज देखते हैं, ऐसे ही मन के वॉल में वो विजन टांग लो और रोज देखो, और उस विजन को प्राप्त करने के लिए जितनी चाहिए एफोर्ट लगा के जाओ, आप कर सकेंगे, क्यों नहीं कर सकते। जो भी लोग आज तक टॉपर बने हैं वो भी तो आप जैसे ही कोई इंसान होंगे ना, आप जैसे ही कोई स्टूडेंट होंगे ना। कई बार तो हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं है, बहुत साधारण स्टूडेंट है, बहुत स्टूडियस भी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने विजन बहुत अच्छा बना लिया, एम अपना एम बहुत अच्छा बना लिया, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो बन सकते, बन जाते हैं, बन जाते हैं। इसलिए रोज सोचना है कि मैं ये बनने वाली हूँ, ये मेरा ही पिक्चर है, बस। और क्या, ये तो इजी बात
जी
है, केवल अपने मन को ट्रेन करना, और बाकी बातों में जब मुझे ये हासिल करना है तो इसी के रास्ते में जो करना है वो करना है, बाकी बातों में हमें अटेंशन नहीं देना है, ध्यान नहीं देना, और साथ में
जी
मेडिटेशन तो चाहिए ही, क्योंकि अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छी कंसंट्रेशन के लिए हमको मेडिटेशन बहुत मदद करता। देखो हम भी छोटे से जब स्टूडेंट थे तब से ही इस लाइन में आए और हमने अपनी पढ़ाई भी की, पढ़ाई के साथ मेडिटेशन को चालू रखा। मेडिटेशन और पढ़ाई दोनों साइमल्टेनियसली चलता रहा। इसके कारण पढ़ाई का मदद हमको, मेडिटेशन का मदद पढ़ाई में बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। हर समय हम सक्सेस रहे। तो मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। ये हमारे जीवन का अपना भी एक्सपीरियंस है, अनेकों का
एक्सपीरियंस। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत ही सुंदर बात ये कही कि भाई ये चीज करके देखने वाली है, और अगर आप पहले से अपने आप को ये चीज कहने लगे कि भाई हाँ मैं तो कर ही लूंगी, इसके लिए अंग्रेजी में कहा भी जाता है द बेस्ट वे टू बिकम इज टू बी। अगर आप कॉन्शियसली उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो चीज करना आसान हो जाता है। एक और दोस्त है हमारे जिन्होंने प्रश्न पूछा है दीदी, इनका नाम है सुप्रीति। सुप्रीति जी पूछती है कि मेरे एक फ्रेंड के बेटे की शादी नहीं हो रही है और कहीं से भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अब वो बहुत परेशान रहने लग गया है और कहता है पता नहीं मुझको मुझ में क्या कमी है, अब लोग क्या कहेंगे, ऐसा कहने लग गया है। तो सुप्रीति जी का प्रश्न है कि ये उनके फ्रेंड का बेटा है जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डील कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि लोग जब ऐसा होता है कि जब उनको कोई चीज मिलती नहीं है तो लोग समझने लगते हैं कि हमारे अंदर ये कमी हो गई होगी, पता नहीं कुछ मेरे अंदर ही कमी है, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। सुप्रीति जी का प्रश्न है।
अच्छा अच्छा सुप्रीति जी, सुप्रीति जी ऐसा है जब समय आता है ना अपने आप हो जाता है। कहते हैं जन्म मृत्यु और विवाह ये फिक्स होता है, इसका दिन भी फिक्स होता है, किसके साथ कहाँ होना है वो भी फिक्स होता है। तो जब समय आएगा अपने आप होगा, इसलिए इसके लिए इतना चिंता करने की कोई बात नहीं है और अपने आप के इंफेरियर समझने की कोई कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में भगवान ने हर एक को बहुत स्पेशलिटी दिया हुआ है। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ विशेषता है, उस विशेषता को लेकर के वो विशेष इंसान है। और फिर शादी की बात है, लाइफ पार्टनर है, वो तो कहते ऊपर से ही बन करके आते हैं, लेकिन समय आना होगा ना, इसलिए घड़ी कहते, लगन कहते, मुहूर्त कहते। जब तक मुहूर्त आए तब तक अपने मन को निराश नहीं करने का, निराश नहीं करने का, जिस काम में लगे हुए हैं वो खुशी खुशी से करते रहने का, जिस फील्ड में है वो तरक्की करने का, अपने फील्ड में बहुत अच्छा तरक्की करे और अच्छा सोचे, अच्छा सोचे, बजाय कि हम जल्दी करें, जल्दी जल्दी बहुत हरी हरी ना करें, धीरे से जो काम होता है ना वो अच्छा होता है। थोड़ा देरी ही हो जाए, अगर शादी हो और लक्ष्मी जैसी बहू घर में आए और पूरे घर में शांति ला दे सबके लिए तो वो ठीक रहेगा ना। हड़बड़ करके कोई काम करें और वो बहू बहुत अच्छी ठीक ना हो, रिलेशन इतना अच्छा ना बैठे और बाद में उसके कारण बहुत कुछ भुगतना पड़े, उससे तो भाई कोई बात नहीं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसमें घबराने की, अधीर्य होने की बात नहीं है, धीरज धरना होता है। और बस जब तक समय आए तब तक आप खुशी में रहो। इन्फेरियर क्यों फील करते हो? इन्फेरियरिटी फील करने की कोई बात नहीं है, आप जिस फील्ड में हो और मन लगा के काम करो, हम उत्साह से खुशी से रहो, भगवान को याद करो, परमात्मा को। परमात्मा तो बहुत बड़ा जीवन साथी है, परमात्मा जीवन साथी है, उसको उसका साथ लेकर आप अपने जीवन में चलते चलो, गीत गाता चलो साथी, गुनगुनाता चल, ठीक है ना, बस गुनगुनाता चल। क्यों इंफीरियर समझते हो? आप तो बहुत अच्छे हो, भगवान ने हर एक को बहुत कुछ बहुत अच्छा दिया। बस ऐसी काउंसिलिंग आप उनको दीजिए, सुप्रीति बहन आप अपने फ्रेंड को ऐसा काउंसिलिंग दीजिए। हो सकता है कि माँ बाप को थोड़ी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी लगती है, जल्दी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो होगा ही अपने आप समय।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मैं अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हैं और हिमांशु जी प्रश्न पूछते हैं, हाउ कैन वी फील आवर सोल इजिली। बहुत सारे दोस्त पिछले 4 महीनों में लॉकडाउन के समय में ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्सेस किए हैं बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोग नए हैं मेडिटेशन के लिए, तो बहुत सारे लोगों के इससे मिलते जुलते भी प्रश्न होते हैं। हिमांशु जी यूट्यूब से जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम आत्मा महसूस करना चाहते हैं अपने आप को, बट वो इजीली नहीं होता, तो हम इजीली महसूस हो इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसा वो पूछते हैं। और ऐसे ही एक और दोस्त हैं रमेश जी, जो इनसे मिलता जुलता सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, योग करते समय ज्योति बिंदु लाइट देखना, परमात्मा लाइट देखना, ये कल्पना ही लगता है, रियलिटी महसूस नहीं होता, प्लीज गाइड करें। एक तो आत्मा को कैसे महसूस करें ये प्रश्न पूछा है हिमांशु जी ने, और रमेश जी परमात्मा की महसूसता के बारे में पूछते हैं।
बहुत अच्छा, आप दोनों ने मेडिटेशन ट्राई तो किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने ट्राई किया और ट्राई करने के रास्ते में ये सब बातें आती है, शुरू शुरू में बिगिनर्स को आती है, हमें भी आई थी, तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हिमांशु जी ने जो बोला, देखिए हिमांशु भाई, आत्मा को कैसे हम समझे ना, आत्मा कैसे है हमारे भ्रुकुटी के अंदर, कैसे समझे, वो तो विजुअलाइज करने की बात होती है। विजुअलाइज करना तब तक प्रॉब्लम होता है जब तक हम उसके बारे में न जाने, लेकिन जब जान जाते हैं कि वो ऐसा चीज है, फिर तो मन की आंखों से देखना बहुत सहज होता है। जैसे हम सब ने हार्ट देखा है क्या, हमारा अपना हार्ट अपने अंदर काम कर रहा है क्या, हमने देखा, आपने देखा है कभी हार्ट, लंग्स देखा है, हार्ट देखा है, नहीं देखा ना, लेकिन हार्ट के बारे में नॉलेज तो मिली ना, किताबों में पढ़ा ना कि हार्ट ऐसा एक ऑर्गन है शरीर के अंदर, ये अपने हाथ की मुट्ठी के बराबर उसका साइज होता है, और वो ब्लड पंपिंग करता है, ब्लड प्यूरिफाई करता है। ये इतना सा नॉलेज, इतना सा इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण हम अपने अपने मन में सोच लेते हैं, वो विजन तैयार हो जाती है कि हमारे छाती के बाएं साइड में हार्ट है कि नहीं है, इसके लिए कोई संदेह नहीं होता। आपको डाउट होता है, बोलिए हिमांशु जी, आपको डाउट होता है हार्ट है या पता नहीं, मेरा तो हार्ट है कि नहीं, दूसरों का तो है कहते, मेरा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है ना, हार्ट है आपने मान लिया, और मन ही मनो हार्ट का एक छवि आपके मन में बन गया है, और हार्ट के बारे में आप सोचते होंगे हार्ट मेरा है। इसी प्रकार आत्मा के बारे में जब तक हम नहीं जानते थे, उसके बारे में सोचने में थोड़ा मुश्किल होता था। अब तो आत्मा के बारे में जान लिया कि आत्मा एक अति सूक्ष्म, एक सितारे जैसी, एक ज्योति बिंदु है, वो एक शक्ति है, उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं, इतनी शक्ति है जो पूरे शरीर को वो चलाती है, और वो आत्मा हमारे भ्रु के मध्य, भ्रुकुटी के मध्य में, हमारे ब्रेन के मिड पोर्शन में वो रहती है, जहां से एकदम हमारे ये ब्रेन का जो बीच में जो मिड पोर्शन होता है ना, हाइपोथैलेमस, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड शुरू होती है, उसके बीच में आत्मा का वो अवस्थान है, वहां एक छोटी सी बिंदु, जस्ट लाइक एन एटम, जस्ट लाइक ए मॉलिक्यूल, एक शक्ति है। अब ये जब जान लिया, अब इसके बारे में सोचना कोई कठिन की बात ही नहीं। आप सोचिए, एक लाइट जैसा एक छोटा सा बिंदु है, और वो है तब तो आज मैं जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बात कर पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं, मैं चल पा रहा हूं। अगर वो लाइट निकल जाती तो ये मुख न बोलता, न आके देखती, न कुछ होता, है तब तो बस है, जान लिया कैसा है वो जान लिया। अब उसके बारे में सोचना, सोचना माना विजुअलाइज करना कि ऐसा होगा, एक लाइट है, उसके चारों ओर उजाला है, एक सुंदर सौरा सर्कल है लाइट का, उसके बीच में वो बिंदु शांत प्रकृति में अंदर बैठी हुई है आत्मा, वो मैं हूं। बस इस प्रकार जब आप मन के अंदर ये थॉट लाएंगे, मन की आंखों से देखने का अभ्यास करेंगे, तो स्पष्ट अनुभव होगा आपको। दूसरा, रमेश जी ने जो पूछा कि परमात्मा के बारे में हम कैसा सोचें, कल्पना लगता है, लेकिन भाई गाड़ी चल रही है तो जरूर ड्राइवर को होगा ना। बस में बैठे हुए जो सारे पैसेंजर है, हो सकता है कि ड्राइवर को देख ना पाए। अगर वो कहे कि पता नहीं ड्राइवर है या नहीं बस में, ड्राइवर है कल्पना लग रहा है, तो कहेंगे ये बस कौन चला रहा है, आप नहीं देख रहे लेकिन चल तो रहा है ना। ये सारी दुनिया यूनिवर्स को चलाने वाली एक परम शक्ति, शक्ति परम सत्ता जरूर है तो सही ना। वो कैसा है पहले हम नहीं जानते थे, इसलिए सोचने में मुश्किल होता था। कभी मंदिरों में, कभी मूर्ति में, कभी पेड़ पौधों में, कभी आकाश में, कभी सूर्य में, कभी बादलों में ढूंढते थे। लेकिन अभी तो मालूम पड़ गया ना आपको भी कि वो परमात्मा ही पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है। पॉइंट मीन्स जस्ट लाइक ए पॉइंट, बिंदु, ज्योति ना। देखिए एक सर्कल का सेंटर कैसा होता है, बिंदु होता है ना। रमेश भाई आप देखिए, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसका सेंटर पॉइंट होता है कि नहीं, वो बिंदु होता है। एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसका भी सेंटर पॉइंट क्या होता है, वो भी एक बिंदु ही होता है। एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसका भी सेंटर कैसा होता है, वो भी बिंदु ही होता है। ये सारी दुनिया की, यूनिवर्स की सारी शक्तियों का जो सर्कल है, उसका भी तो सेंटर होगा ना, वो सेंटर भी बिंदु ही है, पॉइंट है। तो वो पॉइंट जो है ना, सेंट्रल पॉइंट जो है ना, वही तो परमात्मा है। परमात्मा छोटा सा बिंदु है, लेकिन उस बिंदु में ही सर्वशक्ति समाई हुई है, क्योंकि कोई भी चीज की सेंटर में ही सारी शक्ति समाई होती है। तो परमात्मा जो है अच्छी शक्तियों का वो केंद्र है, वो उज्जवल ज्योति। आप सोचिए हम तो पृथ्वी में हैं, ऐसे पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उन सभी के सेंटर में। और हम सोचेंगे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर पूरे विश्व ब्रह्मांड के केंद्र में एक शांति का स्थान है, वहां पर ही वो बिंदु, वो सेंटर पॉइंट है, वो उज्जवल ज्योति है, सेंटर में ही सारी शक्ति समाई होती है। सेंट्रल मास कहाँ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ही होता है। तो सेंटर ही, वही तो परमात्मा है। अब बताइए कि ये क्या कल्पना है, नहीं है ना। हर चीज का सेंटर तो होगा, वो कल्पना तो नहीं हो सकता। तो कल्पना आपको इसलिए लगता है कि हो सकता है आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतन नहीं किया। अभी चिंतन करके देखिए कि परमात्मा तो जरूर है, और बहुत सरल तरीके से उन्होंने परिचय दिया, मैं ऐसा हूँ, ताकि हम सब सोच सकें। परमात्मा की अवस्थिति को, अवस्थान को विद्वान से विद्वान व्यक्ति बहुत ऊंची साधना, ऊंचा स्टडी करे तो भी उसी जगह पहुंचने वाला है, और साधारण से साधारण पर व्यक्ति भी समझे अच्छी तरह से भी, तो भी उसी जगह पहुंचने वाला है। वो है हम सब का परम पिता, परम शक्ति, जिससे, जिसके पास से हम आए हैं, फिर उसके पास हमको जाना है। तो ये मन में लाना, मेडिटेशन में विजुअलाइज करना होता है, मन में ला करके फिर उसके साथ के रिलेशन को याद करना होता है कि वही तो हमारा अपना है, वह हमारा माता पिता सब कुछ है, उनके पास शांति का सोर्स है, मैं एक शांति का यूनिट हूँ, मुझे यूनिट को और शांति चाहिए तो किससे, उनसे ही लेना। मुझे शक्ति चाहिए, उस शक्ति का सोर्स है, मैं तो एक शक्ति का यूनिट हूँ, मुझे और शक्ति चाहिए, उनसे ही लेना है। तो मन को उनसे लगाना, यही तो मेडिटेशन है। वास्तव में समझ लीजिए तो कोई कठिन नहीं है। बाकी हाँ, बहुत कुछ पढ़ाई किया है, अलग अलग लेखकों का अलग अलग बातें पढ़ा होगा ना, तो वो सब बातें थोड़ी बुद्धि में वो हो जाती है ऐसी लेकिन
जी,
बस
बहुत ही
सिंपल
अच्छी बात
चीज।
आपने कही दीदी कि ये जो आपने सेंटर के पॉइंट का एग्जांपल दिया कि एक सर्कल का शुरुआत उस सर्कल के पेन सेंटर पॉइंट से होती है और उसी से वो सारा सर्कल बनता है, तो एक बहुत ही साइंटिफिक एस्पेक्ट है। और जैसे आपने कहा, इसे और अभ्यास की जरूरत है, ज्यादा चिंतन की जरूरत है, और करते करते ये हो जाएगा। अगले एक प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों हम हाफ एन आवर तक पहुंच गए हैं, 30 मिनट पूरे हो गए हैं। अगर आपको लगता है इस बीच के आपको कुछ सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहां पर भी आप देख रहे हैं, और वहां से हम आपके प्रश्नों को लेंगे और दीदी जी से उसका मार्गदर्शन लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आप सिर्फ शेयर करना चाहते हैं कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका कोई ख्याल है जो लिख के भेजना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट्स में लिखें और वो भी शाउट आउट्स में आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर। दीदी, तनुज हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से, और तनुज जी का प्रश्न है कि मैं ट्राई करता हूं कि लोगों से बीके द्वारा बताया गया व्यवहार करने का, बट जब लोग नहीं समझते हैं और बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब तक मैं बुरे से बात नहीं करूं तब तक वो सेम क्वेश्चन पूछते रहते हैं और इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा तनुज पूछते हैं। तो वो समझने की कोशिश करते हैं कि मैं एंगर से कैसे ऊपर उठूं, क्योंकि जब लोग सेम चीजें मेरे को पूछते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, ऐसा वो कहते हैं।
इनका नाम क्या बताया? मनोज बताया?
तनुज, तनुज,
तनुज। अच्छा अच्छा
जी,
ठीक है तनुज भाई, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैं चाहता हूँ बीके ने सिखाया जैसा व्यवहार करने का, ऐसा बोला ना?
जी जी।
तो बीके में जो सिखाया जाता है, शांति से रहो, गुस्सा नहीं करो, मीठा बोलो, ऐसा है ना? तो आप तो कोशिश तो कर रहे हैं ना। वास्तव में क्या है, आज दुनिया जो है ना, दुनिया तो बिल्कुल उल्टी चल रही है। अच्छा बोलने वालों के ऊपर भी गुस्सा करती है दुनिया के लोग, समझते नहीं है, लेकिन बेसमझों के ऊपर समझदार को कभी गुस्सा नहीं कर सकता, ठीक है ना? जो समझते नहीं है तो वो हमारे छोटे भाई है, और जो समझते हैं, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, तो मैं बड़ा भाई हो गया। तो बड़ा भाई छोटे भाई की इन सब गलतियों को देख करके क्या करता है? ये सबसे पहले तो रहम रखता है, प्यार रखता है, थोड़ी क्षमा की भावना भी रखता है। अगर हर बार गुस्सा करे तो काम नहीं बनेगा। सारी दुनिया तो गुस्सा के ऊपर ही चल रही है, लेकिन हमें जो यहाँ पर शिक्षा मिली है, गुस्सा से काम बनने वाला नहीं है, शांति से काम बनने वाला। तो दूसरे अगर बार बार पूछते हैं या हमें टीज करते हैं, हमें इरिटेट करने की कोशिश करते हैं, हमें इरिटेटेड नहीं हो, क्योंकि हमने समझा है कि ये गलत आचरण, गलत तो गलत ही है, सही तो सही ही है। अगर किसी के गलत आचरण पर हम भी गलत करने लग जाएं, तो गलती से गलती को सुधारा नहीं जा सकता है। हाँ, इसलिए हमको अपने माइंड को थोड़ा कूल रखना पड़ेगा और उनकी इस आचरण पर हमें थोड़ी रहम रखनी पड़ेगी। बेचारे देखो, उनको इतनी भी समझ नहीं है, ये तो उनकी कमजोरी है, ये तो उनका वीकनेस है, कमजोर है, कमजोर से क्यों गुस्सा करें? कमजोर व्यक्ति तो कमजोर ही होता है, उसके ऊपर तो दया आनी चाहिए। तो ऐसी भावना लाएंगे ना तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और एक बात याद ये रखना है कि मैं जितना बार गुस्सा करूंगा ना, मेरा ही नुकसान होगा। गुस्सा करने पर मैं दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ रहा हूँ, मैं अपने आप का ही बिगाड़ रहा हूँ। मेरी शक्ति मैं खर्च कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा खर्च कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कमजोर कर रहा हूँ। तो आप बताइए, क्या आप अपने आप को कमजोर करना चाहेंगे, कमजोर करना चाहेंगे या शक्तिशाली बनाना चाहेंगे? तनुज भाई बताइए, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है या कमजोर करना है? शक्तिशाली बनाना है, शक्ति संचय करना है
जी।
जैसे हमने हमने बड़े कष्ट से अर्निंग के बैंक में जमा रखा है, तो वो हम जमा रखना है, जमा ही करना चाहेंगे या किसी के कहने पर झट से खर्च कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो शक्ति भी जमा करने का है, किसी के इरिटेशन दिलाने पर हम भी अगर बार बार इरिटेटेड हो जाए तो हमारी संचय की हुई शक्ति तो सारी गई
जी।
ऐसा नहीं करने का, हमें शांति से काम लेने का है, धीरज से काम लेने का है। गुस्सा से काम बिगड़ता है, गुस्सा से रिलेशंस बिगड़ते हैं और हमारा ही नुकसान होता है। जो कोई हमें हमारी सुनता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे चलो अपनी मस्ती में चलो।
जी, बहुत ही सुंदर बात है दीदी ये चीज कि हम अपनी चीज नहीं छोड़ें, कि भाई अगर हम अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं तो अगर हम भी वही करने लग जाएं उनके वश होकर, अगर हमें भी गुस्सा आने लगे तो फिर हमारा अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा, ये डिफरेंस ही नहीं रहेगा। तो इसलिए अच्छे व्यवहार के प्रति फोकस रखना, अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो करते करते चीजें हो जाती हैं। अगला एक प्रश्न है दीदी, मंजे कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक से लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को वो, और वो प्रश्न पूछते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो नींद आने लगती है, क्या करें। और ये भी हमारे एक यंग दोस्त हैं मंजे जी, और वो कहते हैं बहुत सारे लोग जो नए नए से मेडिटेशन कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रहता है, लोग सुबह उठते हैं मेडिटेशन के लिए और कभी कभार साइलेंस में बैठते हैं तो भी मतलब कुछ लोगों को नींद आने लगती है, तो क्या करें ये पूछते हैं मंजय।
अच्छा अच्छा मेडिटेशन बैठते हैं तो नींद आने लगती है सर मंजय कुमार। अच्छा देखिए, नींद आने लगना माना अपनी ब्रेन, अपने ब्रेन को आप थोड़ा विश्राम दे रहे हैं, ये तो फर्स्ट स्टेप हुआ ना। मेडिटेशन से अपनी ब्रेन को विश्रांति मिल रही है, ये तो अच्छी बात है। परंतु अगर आप उस टाइम सचमुच नींद का आनंद लेने लग जाएं तो मेडिटेशन का टाइम तो चला जाएगा। इसलिए अपने आप को अवेक अवेक अपने आप को जागृत रखना है। नींद आने लगे तो कोई बात नहीं, आप इतना टेंशन में मत आइए, अपने आप को जगा दीजिए। अरे मैं तो मेडिटेशन करने बैठा था, शुरू शुरू में मेरे थॉट जो हैं थोड़ी शांत होने लगे हैं, इसलिए मुझे बहुत थका हुआ था इसलिए शायद विश्राम का अनुभव हो रहा है, लेकिन मुझे अगर मुंह धुलाई करना है तो थोड़ा मुंह धुलाई करके फ्रेश होके पानी पी के बैठ जाए और मेडिटेशन को आगे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ता है तब जब हम अपनी थॉट्स को आगे बढ़ाते हैं। मेडिटेशन माना ये नहीं कि बिल्कुल स्टिलनेस, कुछ सोचना नहीं, बस नींद में चला जाना, ये मेडिटेशन का मीनिंग नहीं है। मेडिटेशन में हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और उस थॉट्स को धीरे धीरे आगे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं। पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड कम होती है, इसलिए ब्रेन जो है बहुत बहुत जो स्पीड से चल रही थी ना वो थोड़ी शांत होने लगती है। परंतु उन थॉट्स को चलाते रहेंगे तो फिर नींद नहीं आएगा। तो क्या थॉट्स को चलाना है, अपनी आत्मा को सबसे पहले अपने मन की आंखों से देखना है, अपनी भ्रुकुटी के अंदर में आत्मा की उपस्थिति को, प्रेजेंस को फील करना है। सचमुच इस शरीर के अंदर एक आत्मा है आपको फील होना चाहिए, और मन की आंखों से आप फील कीजिए कि ब्रेन के अंदर भ्रुकुटी के मध्य ज्योति चमक रही है, मेरे भ्रुकुटी के अंदर मेरी मैं आत्मा चमक रही हूँ, मैं आत्मा बहुत शुद्ध शांत पवित्र ज्योति हूँ। शांत कहने से उसकी शांति का वो शीतलता फील कीजिए। फिर आप अपने आप को सोचिए मैं आत्मा पवित्र हूँ, तो पवित्र हूँ तुम्हें कितनी पवित्र क्यों स्वच्छ वो सीरेनिटी फील कीजिए, प्यूरिटी। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, निस्वार्थ प्रेम, निर्मल प्रेम शक्ति मेरे पास, उसको फील करना। ये भी संकल्प उत्पन्न करना और उसको फील करना, संकल्प उत्पन्न करना और उसको फील करना। फिर ऐसे करते करते अपने आप को बहुत भरपूर अनुभव करेंगे ना, फिर हम लिंक करेंगे उससे, परमात्मा से। मैं जैसे शांति का एक स्वरूप हूँ, परमात्मा तो सागर है, अब मैं मन को उनसे जोड़ता हूँ ताकि उस सागर से मेरे पास और शांति आ जाए। तो परमात्मा के बारे में सोचना शुरू करेंगे, परमात्मा वो परम शक्ति, वो भी ज्योति लेकिन मेरे से बहुत बड़ी ताकतवर ज्योति, परम शक्ति सुप्रीम पावर है, उसके बारे में सोचेंगे। और ये भी सोचेंगे वो बहुत शक्तिशाली है लेकिन वो मेरा क्या, मैं मेरा क्या लगता है, वो तो मेरा बहुत अपना है, नियर एंड डियर है, मेरी हर बात को सुनने वाला, हर बात का रिस्पॉन्स देने वाला, मेरा सच्चा दोस्त है वो। ऐसे उनके बारे में सोचने लग जाना, पहले आत्मा के बारे में सोचते सोचते धीरे धीरे सोच को परमात्मा की सोच के साथ लिंक कर देना, और परमात्मा के बारे में सोचते सोचते मन आनंदित होने लगेगा, उस आनंद की खुशबू का वो अनुभव कर, एंजॉय करेगा। ऐसे मेडिटेशन को आगे बढ़ाना है, परंतु मेडिटेशन करने छोड़ना नहीं, और अगर नींद आती
जी
है ना तो नींद को भगाने का कुछ व्यवस्था करना, म्यूजिक बजाना, कोई म्यूजिक सॉफ्ट म्यूजिक बजाइए, या मुंह हाथ धो के फ्रेश होके आइए, अच्छे अच्छे विचार मन में उत्पन्न कीजिए। विचार जब उत्पन्न करता है तो मन बिजी हो जाता है, बिजी मन कभी सोएगा नहीं, और
जी
मेडिटेशन का समय आपका सक्सेसफुल्ली पार होगा, और
जी
मेडिटेशन के बाद, उठने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई बहुत शीतल झरने के पानी में स्नान करके आ गया, मैं बहुत फ्रेश हूँ, ऐसा।
बहुत ही अच्छी बात आपने बताई दीदी कि मेडिटेशन के दौरान नींद आना कोई बुरी चीज नहीं है, कि हाँ आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है, बट उस रिलैक्सेशन को आप नींद में ले जाते हैं तो फिर वो टाइम आपका चला जाता है, और इसलिए आप कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने अक्सर ये सुना है कि मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप एंड स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन कहा जाता है दोस्तों। तो अगर आप मेडिटेशन के समय पर कॉन्शियसली अवेक रह सकते हैं और अपने माइंड को, थॉट्स को कम कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस है, और इससे बहुत बार लोग स्लीप में स्लिप कर जाते हैं, बट इसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, कभी कभी चलते फिरते करना पड़ता है, जैसे दीदी ने कहा फ्रेश होके आइए, फेस वॉश करके बैठें, ऐसा कुछ बहुत कुछ हम कर सकते हैं, और बहुत क्रिएटिव आंसर्स दीदी ने दिए भी हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे दोस्त मंजय जी इस पर काम करेंगे। कुछ और दोस्तों ने चीजें बताई हैं, आज बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा है कि सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, दक्षिण भारत में और कुछ और राज्यों में कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी, मगर सभी को ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी के जन्माष्टमी के मैसेजेस के लिए भी, और बहुत सुंदर मैसेजेस आप स्क्रीन पे देखते रहेंगे, जिन्होंने भी विश किया है वो सब कुछ यहाँ पर देख पाएंगे आप। दोस्तों लगभग हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रीति जोशी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं दीदी, और वो लाइव देख रही हैं फेसबुक पे, और वो प्रश्न पूछती हैं, क्षमा करने के बाद भी अगर कोई हमसे बुरा व्यवहार करे फिर वो रिलेशनशिप खत्म करने का मन करता है, जब रहम काम न करे तो वो टॉर्चर अपनी लाइफ से खत्म कब होगा, ऐसा विचार चलता है। प्रीति जी ये प्रश्न पूछते हैं।
अच्छा, प्रीति जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो आपने क्षमा का ट्राई किया ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्षमा एक बार दो बार करने से कई बार नहीं होता है। तो किसने कब कहा कि एक बार दो बार करो और उसके बाद छोड़ दो फिर क्षमा करना? क्षमा माना क्षमा, करते जाओ। क्षमा करने से अपने आप धीरे धीरे वो व्यक्ति बदल सकता है। क्या है, किसके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब कितना गहरा है, कितना पुराना है, वो तो हम नहीं जानते ना। जैसे कोई किसी को कुछ बुरा व्यवहार करता है, बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, तो हमें जरूर बुरा लगता है, और ऐसी हालत में क्षमा करने की जो सोचता है वो तो बहुत महान है, बहुत महान है। क्षमा करने की भावना जिसने मन में ली, बहुत महान, आप बहुत महान है प्रीति जी। आपने क्षमा किया, क्षमा करने का सोचा, क्षमा किया भी आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, बहुत बड़ी बात। क्योंकि क्योंकि कहते हैं जो क्षमा करता है वही महान होता है, और क्षमा वास्तव में भगवान का गुण है, और जिसने क्षमा करने का सोचा वो भगवान समान गुणों को उसने अपना लिया, भगवान उसको मदद करेंगे। लेकिन बात यह है कि क्षमा करने के बाद भी अगर कोई अपनी हरकत को नहीं बदलता है तो हम कई बार इरिटेटेड होते हैं, ऐसी हालत में हमें और भी क्षमा करने की जरूरत होती है, क्योंकि उनके साथ जो हमारा कार्मिक अकाउंट कितना गहरा है वो हमको पता नहीं है। एक बार दो बार क्षमा करने से हमारा सारा ऋण शायद चुकाया नहीं गया, इसलिए वो फिर ऐसा कर रहा है। और क्षमा कीजिए, और क्षमा कीजिए। क्षमा करते करते आपका दिल मजबूत होता जाएगा, आपका दिल बहुत गहरा होता जाएगा। और क्षमा करना, तो देखो माँ ही बच्चे को क्षमा कर सकती है ना, हर कोई क्षमा नहीं कर सकता। माँ का दिल कितना गहरा होता है, क्षमा करने का दिल, करने वाले का दिल उतना ही गहरा बनता जाता है। और क्षमा सबसे बड़ा कहते हैं वीर का भूषण है, क्षमा वीर का भूषण है। और जो कोई गलती के ऊपर गलती करते हैं वो कायर है, तो कायर है तो कमजोर है, इसलिए आप तो वीर हैं। क्षमा करते जाना है हमें, इसमें ये नहीं सोचना है कि रिलेशन खत्म कर दें। रिलेशन खत्म नहीं होता, बल्कि निगेटिव रिलेशन और गहरा होता जाता है। ये जो आप सोच रहे हैं ना उसके साथ रिलेशन खत्म कर दो माना बातचीत न करो, टेलीफोन न करो, कुछ न लो, कुछ न दो, कुछ मदद न करो, कुछ आना जाना लेन देन नहीं, लेकिन संकल्प का टागफ वार तो चलता रहेगा और ये ज्यादा इंटेंसिटी से चलेगा, क्योंकि हमने अब रिलेशन को क्या कर दिया, तोड़ने की कोशिश कर दिया। तोड़ने की जब कोशिश किया उसमें ज्यादा टेंशन पैदा होगा, भले आप फोन ना करिए लेकिन उसके संकल्प आपको आएंगे, आपके संकल्प उसके पास जाएंगे, बिना बोले ही ये वार चलता रहेगा, निगेटिव अकाउंट और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसलिए निगेटिव अकाउंट को बढ़ाने का समय नहीं है, क्षमा के द्वारा शुभ भावना के। दूसरी बात है कि जिसको आप क्षमा कर रहे हैं ना, केवल क्षमा ही नहीं कीजिए, उसको शक्ति का दान दीजिए, शक्ति का सहयोग दीजिए। अगला जिसको आप दान क्षमा दे रहे हैं उसके पास शायद वो शक्ति नहीं है जो क्षमा को समझ सके, इसलिए क्षमा के साथ साथ संकल्प के द्वारा, मन की शुभ भावना के द्वारा, हृदय की गहराई के द्वारा उसके प्रति कल्याण की भावना रखना, उसके प्रति प्रे करना कि भगवान उसको शक्ति दे, उसको समझने की शक्ति दे, उसको बदलने की शक्ति दे, और एट द सेम टाइम मुझे भी और क्षमा करते जाने की शक्ति भगवान से मिले। इसलिए उसके प्रति भी आपको क्या करना है, शुभ भावनाओं का दान देना है, अपने प्रति भी शुभ भावनाओं का दान देना है, अपने प्रति भी शुभ भावना का दान करता है। इसको परमात्मा से शक्ति लेना कहते हैं, दुआ लेना कहते हैं। अपने को भी दुआ दो, दूसरों को भी दुआ दो, दुआ देते जाओ देते जाओ, यू विल बी द विनर, आप एक दिन विनर बनेंगे। इसलिए क्षमा ही बहुत बड़ा एक टूल है हमारा बजाय की लड़ने के। रिलेशन खत्म कर दे कहने पर कभी खत्म नहीं, क्योंकि ये कर्मों का ताना बाना है, इसकी गति बड़ी सूक्ष्म है। गीता में भी लिखा है कर्मणा गहनो गति, आप सोचिए तो सही
जी।
इसमें हमको
बहुत ही जी जी आप बोलिए दीदी, कंटिन्यू करें प्लीज।
इसमें हमको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत मदद करेगा, क्योंकि क्षमा करते रहने के लिए हमारा दिल कितना मजबूत चाहिए, हमारे अंदर कितनी धीरज की शक्ति चाहिए, सहन करने की भी शक्ति चाहिए, शुभ भावना सतत सुलभ शुभ भावना निकलते रहने के लिए हमको शक्ति चाहिए, उसको क्षमा देने के लिए, उसको बदलने के लिए हमको शक्ति चाहिए। हमको शक्ति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हमको रोज स्पिरिचुअल नॉलेज को सुनना, मेडिटेशन करना, इसकी बहुत जरूरत है, जिससे हम अपने आप को एम्पावर कर सकेंगे। जितना हम अपने आप को एम्पावर कर सकेंगे, हम कम से कम इरिटेटेड नहीं होंगे, हम गुस्से में नहीं आएंगे, और हमारे अंदर शुभ भावना की झरना बहती रहेगी, और हम देते रहेंगे देते रहेंगे, और निगेटिव कार्मिक अकाउंट एकदम सेटल हो जाएगा, दुख का संबंध सुख के संबंध में बदल जाएगा, फिर न वो दुख देगा आपको, ना आपकी तरफ से दुख जाएगा, बस बहुत अच्छा हो गया।
जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने कही दीदी, फॉरगिवनेस के बारे में कहा जाता है। जैसे आपने कहा कि वीर व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है, और मैं महात्मा गांधी की एक बात मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी कि इट इज ओनली द स्ट्रांग हु कैन फॉरगिव। अगर आप अंदर से स्ट्रांग है तो ही आप फॉरगिव कर सकते हैं, जो वीक व्यक्ति है वो फॉरगिव नहीं करता, वो तो बदला लेने के बारे में सोचता है।
जी,
और आपने उसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, और सिर्फ एक दो बार क्षमा करना नहीं, उसको एक नेचर बना लेना चाहिए कि हम फॉरगिव करते रहें चीजों को, लोगों को। बहुत ही सुंदर बात है। मेरे पास लगभग 10 मिनट का वक्त और है दोस्तों, और मैं दो प्रश्नों को लेने की कोशिश करूंगा। अमर लाल गुरु बख्शानी है, और ये हमारे साथ YouTube से जुड़े हैं, लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम, और वो प्रश्न पूछते हैं, चुप रहकर क्या जीता जा सकता है, मौन की शक्ति का मीनिंग क्या है ये बताएं। ऐसा कहते हैं, अक्सर कहा जाता है मेडिटेशन जब लोग करते हैं तो लोगों को चुप रहने के लिए कहा जाता है, साइलेंस की प्रैक्टिस बताई जाती है। तो वो पूछते हैं कि ऐसे में हम क्या जीत सकते हैं चुप रहकर, और मौन की
बहुत
शक्ति
अच्छा,
से क्या पॉसिबल है।
बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। देखिए, कहते हैं एक चुप सौ सुख, एक चुप सौ सुख। क्या जीत सकते हैं? सौ सुख जीत सकते हैं आप। जितना चुप रहेंगे, जितना बार चुप रहेंगे, उतना सुख जीत सकेंगे। क्योंकि जितनी भी समस्याएं दुनिया में पैदा हुई, जितनी भी लड़ाई झगड़े पैदा हुए, इस चुप्पी को तोड़ने से ही होते हैं। और चुप में रहने से हम बहुत सारी समस्याओं को यूं ही खत्म कर सकते हैं। हम खुद भी सुख में रहते हैं, दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। मौन का बहुत बड़ा बल है। मौन अपने आप एक साधना है। मौन में रहने से, जितना हो सके कम बोलने से, दूसरे 10 बात बोले, 100 बात बोले, और आप उसमें से बहुत जरूरी है एक दो बात ही कहें, तो कम बोलने वाले की बात सभी लोग सुनते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। ज्यादा बोलने वाले की बातों को कोई वैल्यू नहीं देता है। दूसरी बात, जो जितना कम बोलता है, उसके बोल संयम के बोल निकलते हैं। कभी मुख से ऐसे वैसे बोल नहीं निकलेंगे। कई बार हम कहते हैं कि अरे, मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता था, भाव मेरी ऐसी नहीं थी, परंतु निकल गई। माना स्लिप ऑफ टांग हो गया। स्लिप ऑफ टांग क्यों हुआ? ज्यादा बोलने से स्लिप ऑफ टांग होता है। सचमुच हमारे से गलतियां होती है, और ये गलतियां क्या करती है? कहते हैं कि लड़ाई से तो, अस्त्रों से तो लोगों की हड्डियों को तोड़ सकते, लेकिन ये जीभ हमारा फिसल गया तो क्या होगा? अनेकों हड्डियां, ये जीभ में कोई हड्डी नहीं, लेकिन होठों की हड्डियों को तोड़ सकता है। इसलिए ज्यादा बोलने से स्लिप ऑफ टंग होने की संभावना है, कम बोलने से ये होने की संभावना नहीं है। इसलिए कहते हैं बहुत कम बोलो। हमें भी परमात्मा ने ये शिक्षा दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। कम बोलेंगे तो धीरे से बोल निकलेगा, कम बोलेंगे तो मीठा बोल निकलेगा। इसलिए कम बोलने का बहुत फायदा है, और कम बोलने से हमारी एनर्जी क्रिएट होती है, अंदर ही शक्ति ऊर्जा पैदा होती है। देखिए, महात्मा गांधी मौन व्रत लेते थे, सुना है ना? हफ्ता में एक दिन तो लेते ही लेते थे, हफ्ता में एक दिन तो मौन व्रत लेते ही लेते थे, और बीच बीच में बहुत लंबे समय तक भी वो मौन व्रत लेते थे। मौन व्रत लेने पर उनके अंदर शक्ति जमा होती थी, शक्ति क्रिएट होती थी, शक्ति रिजर्व होती थी, और वो शक्ति लेकर के ही तो वो इतने सशस्त्र अंग्रेजों से लड़े। अंग्रेजों के पास इतनी ताकत थी, इतने अस्त्र शस्त्र थे, सब कुछ था, लेकिन निरस्त्र भारतवासी, निरस्त्र एक अहिंसा, अहिंसक एक आंदोलनकारी, कैसे उन पर जीत पाया? इस मौनता की साधना में उन्होंने अंदर में जो शक्ति जमा की, उस शक्ति के बल पर उन्होंने सारे भारतवासियों को लीड किया, अहिंसा आंदोलन चलाया और अंग्रेजों को भगाया। ना, मौनता में कितनी शक्ति है बताइए? बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए जितना हो सके कम बोलना अच्छा है। कभी कभी एक दिन पूरा मौन में रहना, मौन का व्रत लेना बहुत अच्छा है। एक दिन पूरा नहीं तो बीच में आधा दिन भी, आधा दिन के लिए मौन रहे, ये बहुत अच्छा है। नहीं तो भी रोज की रूटीन में सवेरे 4 अमृत वेले, हम लोग तो ऐसा करते हैं, अमृत वेले से लेकर सवेरे 8 बजे के समय तक हम लोग सभी प्राय राज्य और सेंटर से जुड़े सभी मौन में रहते हैं। ये समय हम शक्ति जमा करते हैं, सारे दिन में भी जितना कम बोलो बहुत अच्छा है। तो कम बोलने के लिए क्या चाहिए? मन को शांत करने की जरूरत है। कभी ये मुख कहता है बोलो बोलो, ये बात बोल दो बोल दो, लेकिन मुख को क्या करना है? कंट्रोल करना है, जीव को कंट्रोल करना है, अपने आप को राजा बन के ऑर्डर देना है, जितना हो सके कम बोलो। कम बोलने वालों की बात सब सुनेंगे, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। कम बोलने से क्या जीतेंगे? सारी दुनिया जीतेंगे हम। कम बोलने से सारी दुनिया जीतेंगे, हमारा जो वार है ना वो कम बोलने से ही हम जीत सकेंगे, जीवन रूपी युद्ध में।
जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, मौन के बारे में इतनी सारी अच्छी चीजें, साइलेंस में चुप रहने से कितना फायदा होता है, बेनिफिट्स होता है, ये चीज आपने बताई। और कुछ दोस्तों ने ये कहा था, जैसे आप बता भी रहे थे तो उसी टाइम पे हमारे एक दोस्त ने ये भी कहा था कि अगर हम चुप रहते हैं तो चुप रहने से परेशानी में पड़ गए तो क्या करें, ऐसा वो पूछ रहे थे। और आपने उस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया कि हाँ, चुप रहने से आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे और उल्टा आपकी परेशानियां कम होंगी और सॉल्यूशन ज्यादा मिलेंगे और लोगों को जीत सकते हैं, आप दुनिया जीत सकते हैं। ये चीज आपने बताई, मैं समझता हूँ आशा जी ने जो प्रश्न लिखा था उसका भी उनको उत्तर मिल ही गया है। और बहुत सारे दोस्तों ने अच्छी अच्छी बातें फीडबैक के रूप में लिखी हैं, उनको जो बातें पसंद आई वो चीजें लिखी हैं। जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि आपको नशा नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो नशा आपको छोड़ के चला जाएगा, तो ऐसी कुछ बातें लोगों ने अप्रिशिएट किया है। जो परमात्मा की रियलाइजेशन के बारे में आपने जो सर्कल का उदाहरण दिया, उस बात को भी कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छे से लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग जो बात उनको अच्छी लग रही है वो भी लिख कर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपके फीडबैक्स के लिए। एक और आखिरी प्रश्न मैं ले लेना चाहता हूँ। शंकरानंद चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। शंकरानंद जी का प्रश्न है कि एज फार एज द प्रेजेंट सिचुएशन इज कंसर्न, होपलेसनेस इज प्रीवेलेंट एवरीवेयर। तो शंकरानंद जी कहते हैं कि ये जो अभी फिलवक्त सिचुएशन देखने में मिलता है, तो बहुत सारे लोग होपलेसनेस को देखते हैं कि हर जगह होपलेसनेस है, बहुत सारे लोग नाउम्मीदी में जी रहे हैं। तो ऐसे समय पर हमें दूसरों के अंदर होप को एनहेंस करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, लोगों के अंदर उम्मीद जगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्लीज सजेस्ट सम स्पिरिचुअल रेमेडीज, कहते हैं कि आप कुछ आप स्पिरिचुअल रेमेडीज बताएं कि हम लोगों के अंदर उम्मीद जगाए रखें। शंकरानंद
शंकु भाई, असल वास्तव में ये है कि होपलेस वालों को होप पैदा करने के लिए सबसे पहले हमें होपलेस नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हम सदा आशा में रहना है, मोटिवेटेड रहना है, सदा आनंद में चीयरफुल रहना है। और ये जो सिचुएशन चल रहा है, सिचुएशन को भी एंजॉय करना है, ये भी फेज ऑफ लाइफ है, ये भी एक समय का एक नजारा है, ये भी एक मौसम है। देखिए साल में कई प्रकार के मौसम आते हैं, हर मौसम का अलग अलग रूपरेखा होता है, हम लोग एंजॉय करते हैं ना, सर्दी को भी एंजॉय करते हैं तो गर्मी को भी एंजॉय करते हैं। तो ये समय जो आया इसको भी एंजॉय ही करना है, कुछ न कुछ क्रिएटिव काम में लगे रहना है और ये होप रखना है कि इसके बाद का जो आने वाला है वो अच्छा है, अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा कुछ मैसेज ला रहा है, हम सबको अच्छाई के लिए प्रिपेयर करा रहा है, दुनिया भी अभी एक अच्छाई की ओर मोड़ने वाला है, एक नई सुबह आने वाली है, ऐसा आशा मन के अंदर रखना है। बस हम आशा में रहेंगे, हम खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी हम आशा और खुशी दिला सकते हैं। निराशा वाली बात करने वालों को हमें क्या करना है, इशारा करना है कि ऐसी बात नहीं, ऐसी बात सोचो, ऐसी बात नहीं बोलो, ऐसी बात बोलो, क्या हुआ तो अच्छा ही हुआ ना, हर बात के पीछे कुछ न कुछ अच्छी बात छुपी हुई है। एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग कहते हैं ना, बस हर चीज के पीछे कुछ न कुछ अच्छा मैसेज है, वो देखने का सीख लिया ना तो कोई होपलेस।
जी दीदी, यहाँ पर मुझे प्रश्न और लेने की अनुमति नहीं मिलेगी, बहुत सारे दोस्तों के प्रश्न और भी हैं जिनके मैं आज प्रश्न नहीं ले पाऊं, दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बट कल के दोस्तों में से एक दोस्त आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, नीना व्यास, और उन्होंने कल सवाल पूछा था, उनके प्रश्न के उत्तर के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। नीना जी पूछती हैं, मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, 21 इयर्स ओल्ड है और क्रिएटिव नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन चाहिए ऐसा कहते हैं। मैं समझता हूँ नीना जी का प्रश्न बहुत सारे यंगस्टर्स के लिए रिलेवेंट है, एज अ पेरेंट वो कंसर्न है कि उनके बच्चे में वो क्रिएटिवली अपने समय को यूज नहीं कर रहा है और मोबाइल नहीं छोड़ते हैं ये कहते हैं, तो इसके लिए सोल्यूशन मांगते हैं नीना।
ठीक है, बहुत अच्छा है। ये प्रॉब्लम तो घर घर का प्रॉब्लम है, घर घर का प्रॉब्लम है। सीमा जी, ऐसा है कि मोबाइल छोड़ नहीं रहा है। अब छोड़ने की जहाँ बात आती है, सबसे पहले तो समझाना है उसको ना, काउंसिलिंग भी करना है और उसको कुछ और इंटरेस्ट की चीजें उसको सिखाना है, जिसमें बात में उसका इंटरेस्ट है उसकी इंटरेस्ट को मोड़ना है उधर। और अभी तो ये सब बंद के समय में बच्चे अपने फ्रेंड से मिल नहीं पाते हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं, खेल नहीं पाते, स्कूल कॉलेज जा नहीं पाते हैं, तो क्या करें, बस मोबाइल का ही सहारा लेते हैं। लेकिन मोबाइल में इतना टाइम वेस्ट करने से एक तो हमारी आंखों को बहुत नुकसान होता है, ब्रेन को नुकसान होता है, इंसोम्निया डेवलप हो सकता है और बहुत कुछ खराबी आ सकती है। ये बात हमें समझना है और ये धीरे धीरे उनको बताना भी है। एक दिन में सारी बात बताएंगे वो कहेगा कि ये मेरे से छुड़ाने के लिए ये सब काम कर, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बताना है और बहुत प्यार से कहना है कि इतना घंटा इसमें आप स्पेंड नहीं करो, थोड़ा कम करो, इसके बजाय देखो ये काम करो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ दूसरी क्रिएटिव काम में भी, क्योंकि उसका तो और भी कई बातों में इंटरेस्ट हो सकता है, उसकी किस बात में इंटरेस्ट है आप उसको स्टडी कीजिए। कोई क्रिएटिव अच्छी बातों में जिधर इंटरेस्ट है उसको थोड़ा उसमें मोटिवेट कीजिए। और मोबाइल में भी कई स्टडी की बातें होती है, कई बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होती है, वो अपने सिलेक्शन पर है। अगर बच्चा मैच्योर है, समझदार है, तो अच्छी बातों को ही देखेगा या उसमें से कुछ अच्छा ही काम करेगा। और इतनी मेच्योरिटी उसके पास नहीं है तो फिर आपको कोशिश करना पड़ेगा। लेकिन आजकल ये एक एडिक्शन का रूप ले लिया है, आजकल बड़े बड़े शहरों में मोबाइल एडिक्शन सेंटर खोल चुके हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे एडिक्टेड हो, 21 ईयर ओल्ड माना तो बड़ा ही है, वो तो ग्रोन अप चाइल्ड है, वो तो यूथ है, उसको समझ होगी। लेकिन एक दिन में सारी बात थोपने की कोशिश नहीं करना, धीरे 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 थोड़ा सा थोड़ा सा बताना और प्यार से थोड़ा समझा के मोटिवेट कर, जोर जबरदस्ती कुछ नहीं करना, क्योंकि जोर जबरदस्ती करने से उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। ये है, ये तो समस्या हर एक के घर में ही है। और थोड़े छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो ज्यादा ही उनके साथ प्रॉब्लम, क्योंकि वो इतने मेच्योर भी नहीं है। जो टीनेजर्स हैं वो तो इतने मेच्योर भी नहीं है, जो माता पिता की बात को अच्छी तरह समझे, उनसे जोर से छुड़ाया भी नहीं जा सकता। लेकिन आपका बेटा तो थोड़ा बड़ा ही है, तो आप थोड़ी समझदारी से उसको दी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। जी दीदी, आज बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लिए हैं दीदी हमने, लगभग एक घंटे से ज्यादा का समय हमने ले लिया, आज आपसे एक्स्ट्रा समय मांगा है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट हमारे दोस्तों को सारे उत्तर मिले हैं ऐसा मैं समझता हूँ, और बहुत सारे दोस्तों ने थैंक यू के मैसेजेस भेजे हैं, बहुत सारे लोग जो बेनिफिट्स को ले रहे हैं वो भी चीजें शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आपके फीडबैक्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आज प्रश्न पूछने के लिए शुक्रिया, और आप सभी की तरफ से मैं कविता दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ। दीदी अगरतला से आज हमारे साथ लाइव जुड़े, थैंक यू सो मच दीदी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त, जो भी जहाँ से भी जुड़े हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। आपने भी अच्छे अच्छे प्रश्न किए और सब प्रश्न जानने के हिसाब से किए, और इन प्रश्नों का फायदा न केवल आपको और अनेकों को मिलने वाली है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी अच्छा लगा आपके साथ।
जी, थैंक यू सो मच दीदी। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट 2-3 मिनटों के लिए हमारे पास मेडिटेशन के लिए वक्त है, तो नेक्स्ट 3 मिनट्स आप हमें गाइड करें मेडिटेशन के लिए, और सभी लोग आपके साथ मिलकर मेडिटेट करेंगे।
अच्छा। चलिए चलते हैं सभी एक साथ, सभी सभी एक साथ एक संकल्प में एकाग्र होते हैं। क्या संकल्प लेते हैं कि रुकती के मध्य एक ज्योति चमक रही है, उसको मन की आंखों से देखें, अपनी ज्योति को उज्जवल ज्योति आत्मा को चमकते हुए देखें और ये सोचें कि उस आत्मा के चारों शांति की तरंगे हैं, उस बिंदु आत्मा के चारों एक सफेद सर्कल है, सर्कल के अंदर शीतलता है, शांति है। मैं आत्मा शांति के सरोवर के मध्य हूँ, शांति के सरोवर में डूबी हुई हूँ, अपने आप में बहुत शांति महसूस कर रही हूँ, बहुत शीतलता महसूस कर रही हूँ, बहुत योग हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, एक बहुत अच्छी शक्ति, मैं आत्मा अच्छे गुण और अच्छी शक्तियों का समूह हूँ, मैं एक अच्छी शक्ति हूँ आत्मा, मैं अपने आप को बहुत प्यार कर रही हूँ, मैं अपने आप को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखती हूँ, मैं प्यारी सी आत्मा हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मेरी मेरा यह जीवन बहुत वैल्यूएबल है, मैं परमात्मा की अति प्रिय संतान हूँ, उन्होंने मुझे बहुत यूनिक स्पेशलिटीज देकर के भेजा है, मैं इस जीवन रूपी कर्म क्षेत्र पर विनर हूँ, विजयी हूँ, परमात्मा की संतान, अपने मन को परमात्मा की तरफ मोड़ती हूँ, परम धाम में परमे एक शांति का स्थान है, बिल्कुल साइलेंस है, मैं आत्मा मन और बुद्धि से वहां पहुंचती हूँ, शांति के सागर परमात्मा से ज्योति दिव्य ज्योति से मेरी मुलाकात होती है, दिव्य ज्योति के सामने मैं और एक दिव्य ज्योति दो ज्योति का मिलन, शांति का आदान प्रदान, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हो रही हूँ, मैं तृप्त हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, परमात्मा से बहुत शक्तियां प्राप्त, इन शक्तियों को लेकर भरपूर होकर नीचे अपने कर्म क्षेत्र अपने विचारों शांति का बात